ओम शांति। बाबा ने हम सभी बच्चों को प्रतिदिन जो मुरली के द्वारा खजाना दिया, उन खजानों को प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए कर्मयोगी बनने की प्रेरणा दी। कहीं पर भी हमें कर्म सन्यासी नहीं बनना है, परंतु ज्ञान की जो धारणा है, ज्ञान का कर्मों में आचरण में लाना, यही कर्म योगी बनने का आधार है। और इसीलिए कर्म अनिवार्य है। अंतिम घड़ी तक भी किसी न किसी प्रकार से हम कर्म से जुड़े हुए ही रहते हैं। जब से ब्राह्मण जीवन लिया, तब से लेकर के ज्ञान हमें श्रेष्ठ कर्म की ओर प्रेरित करता है। जब इस संसार में बाबा के ज्ञान की वैल्यू को हमने समझा, तो सहज कर्म योगी जीवन को अपनाना आसान हो गया। लेकिन जैसे चलते चलते कई बार कर्म बंधन बन जाता, तो कब कर्म योगी बन जाते हैं? दोनों के बीच में झूलते रहते हैं। कर्म बंधन कब बनता है, यह भी बाबा ने हमें स्पष्ट समझ दी कि जब हम मैंपन के भाव में आ जाते हैं, स्वार्थ भाव में आ जाते हैं, तो कर्म बंधन बनने लगते हैं। जब हम कर्मेंद्रियों के प्रभाव में आ जाते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं, तब यही कर्म बंधन बनने लगता है। और जितना कर्म बंधन बनता जाता है, वो कर्म हमें किसी न किसी रूप में बांधते हैं और एक अकाउंट हमारा क्रिएट कर देता है, जो बढ़ते बढ़ते कर्म बोझ का अनुभव कराता है। इसीलिए ब्राह्मण बनने के बाद जब बाबा ने हमें ये सूक्ष्म गति भी समझाई है कि ये बोझ किस प्रकार अनेक प्रकार की भोगनाओं को अनुभव कराने के लिए निमित्त बनेगी, इसीलिए कर्म योगी बनकर के कर्म करना है। बाबा से जितना हमारा प्यार है, ये प्यार हमें योगी बनाता, लेकिन ईश्वरीय परिवार के संबंध में जब हम आते हैं, तो ये हमें कर्म योगी बनाता है। तो योगी और कर्म योगी ये बनना है। कर्म योग का मतलब क्या है? क्योंकि अगर कर्म योग ही कर्मातीत स्थिति तक ले जाने का एक बूस्टर का काम करता है। कई बार योग नहीं लगता है। कई ब्राह्मणों की भी ये शिकायत होती है, योग नहीं लगता है, अवस्था नहीं बनती है, पता नहीं हम कर्मातीत स्थिति तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कर्मातीत स्थिति तक पहुंचने का सहज सरल साधन है कर्मयोगी बनना। और कर्मयोगी माना खाली बैठकर योग लगाने वाली बात नहीं है। कर्मयोगी का मतलब प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात कि कर्मयोगी बनना माना मैंपन के भाव से ऊपर हो जाना। आज जैसे बाबा ने वरदान में हमें बहुत सुंदर बात कर्मयोग की बताई और यही कहा, करण करावन हार करा रहा है। जब मैंपन के भान से ऊपर उठते हैं और हर वक्त स्मृति में ये रहता है कि करण करावन हार करा रहा है, तो निर्माण का कार्य स्वतः होने लगता है या स्वयं में भी निमित्त भाव प्रकट होने लगता है। ये हमें यथार्थ कर्मयोगी बनाता है। जैसे ही वो मैंपन का भान से ऊपर उठते हैं तब देह भान की जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं, देह अभिमान की जो सूक्ष्म बातें हैं, उनसे अपने आप को ऊपर करना आसान हो जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं देह भान की ये सूक्ष्म वृत्ति अनेक प्रकार के विकर्म का बोझ क्रिएट करने के लिए निमित्त बनती है। बहुत सुंदर अभी हम सभी गीत सुन रहे थे कि जिसमें मनी मन बाबा से हम ये दृढ़ संकल्प कर रहे हैं कि हे ब्रह्मा बाबा, हमें आपके समान बनना है, देह में रहते देहातीत बनना है। देहातीत का मतलब है कि उस देह भान की वृत्ति से परे हो जाना। जब देह भान की वृत्ति से परे होते हैं तो उस समय स्मृति में क्या रहना चाहिए? क्योंकि देह भान निकल गया तो कुछ तो आ जाएगा, अगर वो कुछ नहीं आया तो वापस देह भान आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को विभिन्न स्वमान दिए और प्रतिदिन के लिए, चाहे वरदान के रूप में हमें स्वमान मिलता है, चाहे स्लोगन में कोई ना कोई ऐसी बात होती है, मुरली में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हमारे उस श्रेष्ठ स्वमान को जागृत करता है। और उस स्वमान में स्थित होकर के जब हम कर्म करते हैं तब यथार्थ कर्मयोगी बन जाते हैं। स्वमान का मतलब ये नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक हम रटते जाए कि मान लो कि एक स्वमान ले लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो उसका वो रटना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल उसका स्वरूप बन करके, मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके चलना, कर्म में आना, सर्वशक्तिमान हूं तो वो सर्वशक्तियों का प्रयोग हमारे जीवन में हर कर्म में प्रैक्टिकली होना चाहिए। तब कहेंगे कि उस स्वमान को लेकर के हम कर्म करते चले। अगर स्वमान नहीं रहा तो देहभान आना, देह अभिमान में आ जाना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार है। इसलिए थोड़ा उस स्वमान में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कोई ना कोई युक्ति जरूर अपनानी पड़ती है कि कैसे भी करके हम उसमें स्थित रहे। मान लो कि अगर विस्मृत भी हो जाए तो पुनः किसी विधि से, जैसे बाबा कई बार कहते, बच्चे गांठ बांध लो ताकि गांठ जब भी हाथ में पकड़ में आए तो एकदम याद आ जाए कि हाँ ये किसकी गांठ है। स्वमान में स्थित होने की गांठ है, और वापस अपने आप को उस स्वमान में स्थित करो। अभ्यास जितना निरंतर करते हैं तब जाकर के वो स्वरूप हमारा प्रैक्टिकल बन जाता है। और स्वमान में अगर स्थित है तो उसका प्रमाण क्या? स्वमान में जो स्थित है वो स्वधर्म के आधार पर ही कर्म करेगा, क्योंकि देह भान के बदले जब देही अभिमानी होकर कर्म करना है तो देही अभिमानी मतलब आत्मा के सातों गुण का स्वरूप होकर के वो ऊर्जा हमारे कर्म में प्रवाहित होनी चाहिए। जो कर्म करे वो स्वधर्म के आधार पर हमारा कर्म हो। तो देह भान से परे देही अभिमानी है, और उसको पक्का करने के लिए स्वमान दे दिया गया, तो स्वमान में स्थित स्वधर्म के आधार पर ही कर्म करना आरंभ करेंगे। और वो स्वधर्म हमें अनेक प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि स्वधर्म श्रेष्ठ कर्म की ही प्रेरणा या श्रेष्ठ कर्म की ओर ही ले जाता है हमें। तो आत्मा के सातों गुण ज्ञान युक्त होकर के कर्म करना, हर कर्म शांति से, प्रेम से, पवित्र भावनाओं के साथ, निश्चल वृत्ति के साथ, निर्मल स्वभाव में स्थित होकर के कर्म में आना, ये है स्वधर्म के आधार पर कर्म करना। जहां खुद को भी उसकी फीलिंग आए, आज बाप दादा का संदेश जब सुन रहे थे तो उस समय भी बाबा ने यही कहा, जब हर स्थान की बाबा विशेषता बता रहे थे तो उस समय भी बाबा ने यही कहा कि हरेक की विशेषता की खुशबू, वो सुगंध चारों ओर फैलती है। तो स्वधर्म की भी खुशबू सुगंध चारों ओर फैलने लगती है, दूसरों को भी प्रेरित करती है, या वो एक मैग्नेट की तरह बन करके अनेकों को आकर्षित करती है। दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हो गई वो भी जब स्वधर्म में स्थित होकर के, अनजानेपन से ही स्वधर्म में स्थित होकर के कर्म करते रहे, तो आज भी वो दूसरों के लिए आदर्श बने हैं या दूसरों के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। चाहे ब्राह्मण परिवार में भी ब्रह्मा बाबा कहो, मम्मा कहो, प्रकाशमणि दादी कहो, स्वधर्म में स्थित होकर के कर्म करते रहे, तब आज भी लोग उनको इतना आदर से, सम्मान से, स्नेह से याद करते हैं, आदर्श बन गए। तो अगर वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? बस वो विधि को अपनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि कर्म योगी बनने का भाव है कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण कंट्रोल हो, क्योंकि जो भी कर्म करेंगे वो इंद्रियों के संबंध में आकर के ही कर्म करेंगे। और इसीलिए जब इंद्रियों के ऊपर हमारा संपूर्ण अधिकार हो तो कोई कर्मेंद्रिया मिसयूज नहीं होती है, उन कर्मेंद्रिय के द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचता है। लेकिन कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार रखते हुए उसको प्रयोग करना, डिटैच्ड होकर के जैसे प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा कि जब कर्मेंद्रिय को डिटैच होकर के मालिक बन करके प्रयोग करेंगे तो उसमें अनासक्त वृत्ति सहज आ जाएगी। गीता में जब बार बार भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अनासक्त भाव रख करके तुम कर्म का आचरण कर, क्योंकि गीता को कहा ही जाता है सर्वश्रेष्ठ कर्म योगी बनने की प्रेरणा या विधि, तो अनासक्त वृत्ति के बारे में कहा कि हर इंद्रियों की कहीं न कहीं आसक्ति हो जाती है, और जहां आसक्ति है वहां वो खिंचाव होता है। तो कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार सिर्फ नहीं लेकिन उसको उस खिंचाव से भी अनासक्त कर देना। जब कर्मेंद्रिय अनासक्त वृत्ति में आकर के कर्म का आचरण करती है तो वहां सेवा भाव आता है। अगर आसक्ति के वश किया तो वहां स्वार्थ भाव आता है। तो स्वार्थ भाव से ऊपर उठ करके सेवार्थ भाव, ये बाबा हम बच्चों के अंदर जैसे भरना चाहते हैं। इसीलिए रोज की मुरली के अंदर भी सेवा के लिए विशेष प्रेरणा दी जाती है। सेवार्थ भाव और स्वार्थ भाव बहुत बड़ा अंतर है। जब स्वार्थ भाव से हम कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते हैं तो वहां कर्म बंधन बनता है, लेकिन सेवार्थ भाव से कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते हैं तो वहां हर कर्मेंद्रिया हमारी पावन होने लगती है। बाबा को कहा गया पतित पावन है, तो पतित पावन है तो कैसे है कि जब हमें बाबा ये प्रेरणा देता है कि स्वार्थ नहीं सेवार्थ भाव से कर्मेंद्रिय का प्रयोग करो, और सेवार्थ भाव से कर रहे हैं माना हमारी कर्मेंद्रिय के द्वारा खुद को सुख मिले या नहीं, खुद की इंद्रियों को आराम मिले या नहीं, लेकिन दूसरों को सुख प्रदान करते हैं। जिसके लिए गायन है दधीची ऋषि के समान हड्डी हड्डी स्वाहा करना, तो कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार है माना जब उसको सेवार्थ भाव में प्रयोग करते हैं तो जैसे हड्डी हड्डी हमारी यज्ञ के अंदर स्वाहा होते हुए हर इंद्रियां हर हड्डी पावन बनती जाती है। इस तरह से उसका प्रयोग करना, ये है कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार। दूसरा कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार माना कि प्रकृति के प्रभाव से कर्मेंद्रिय को मुक्त करना। इसीलिए कर्मातीत स्थिति को जिस तरह देहातीत कहा वैसे इंद्रियातीत भी कहते हैं। या दुनिया के अंदर जैसे आज कहा जाता है जितेंद्रिय के संपूर्ण इंद्रियों के ऊपर जिसने जीत प्राप्त कर ली है, ऐसे कई ऋषि मुनि भी हो गए। अगर बिना सर्वोच्च ज्ञान परमात्मा ज्ञान के फिर भी वो जितेंद्रिय बन सके तो हमारे पास तो सर्वोच्च ज्ञान की अथॉरिटी है, क्या हम जितेंद्रिय नहीं बन सकते हैं? इंद्रियातीत यानी इंद्रिया जीत, इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त कर लेना। कहीं पर भी वो इंद्रियां कोई भी प्रकार के आकर्षण में हमें आकर्षित करते हुए उस ओर खींचे नहीं, लेकिन उसको कंट्रोल में ले आए। कर्मेंद्रिय का जब प्रयोग करते हैं तो यही एक श्रेष्ठ भाव अंदर में रहे कि मैं मालिक बन करके ये कर्मेंद्रिय को यूज कर रही हूं। इस तरह से दुनिया में लोग जितेंद्रिय बने, लेकिन उसके लिए उन्होंने त्याग वृत्ति को अपनाया, सब कुछ छोड़ देना, त्याग कर देना, कठिन मार्ग को अपनाया। आज भी अगर जैन धर्म में देखा जाए तो लोग यही कहते हैं कि जितेंद्रिय तो बने लेकिन मार्ग बड़ा कठिन है, क्योंकि सब कुछ छोड़ देना ये संभव नहीं हो पाता है आज की दुनिया में। बाबा ने हमें छोड़ना नहीं कहा, लेकिन ज्ञान की शक्ति से कर्मेंद्रिय को भी समझते हुए उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर देना, साधनों को यूज करना है लेकिन फिर भी उसमें आसक्ति भाव न हो, इस तरीके से जीत प्राप्त करना सिखाया। वहां जो महान आत्माएं हो गए वो जितेंद्रिय बने, पीछे शिष्य को जितेंद्रिय बना नहीं पाए। क्यों? क्योंकि समझ नहीं थी, इसलिए हट किया। हट करके जैसे अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया, या जैसे बाबा दुनिया में कहते हैं, मुरली में कई बार सुनाते हैं कि आज की दुनिया में कई साधु संत भी दवाइयां खा करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा ज्ञान की शक्ति से समझ से उस कर्मेंद्रिय को समझते हुए उसको मोड़ देते हैं, और यही हमारी सच्ची तपस्या है। बाबा की एक एक बात कितनी ऊंची है हमारे लिए, कितनी ऊंची प्रेरणा देती है, और इसी तरह से हमें कर्मातीत बनाती है। तो इंद्रियातीत यानी इंद्रिय जीत बनना। तीसरी बात, कर्मयोगी बनना माना श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ करके चलना, और कुछ नहीं आता है। भाई कर्मयोगी कैसे बने? नहीं आता हो तो क्या करो, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा ने हर कर्म के लिए श्रीमत दी हुई है, उस श्रीमत का हाथ पकड़ करके चलते चलो। कहा जाता है कि बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है। बाबा का हाथ ही है श्रीमत, श्रीमत रूपी हाथ, और ये श्रीमत रूपी हाथ को जिसने पकड़ना जान मन समझ लिया और उस हाथ को पकड़ते हुए चलते हैं, उसका कर्म श्रेष्ठ नेचुरल होने लगता है। कहने का भावार्थ मेरा ये कि ये श्रेष्ठ कर्म का खाता हमारा बनाता जाता है श्रीमत, श्रेष्ठ कर्म की ओर ही हमें ले चलती है, जहां एक एक कर्म हमारा यादगार बन जाता है। बाबा कई बार हम बच्चों को कहते भी है कि श्रीमत को सर माथे करते हुए चलो, यानी इतना रिगार्ड रिस्पेक्ट बाबा की हर श्रीमत के प्रति हो। ये नहीं कि मतलब से हमने श्रीमत को भी यूज किया, लेकिन हर वक्त श्रीमत का हाथ जिसने पकड़ा होगा उसका उसके सर के ऊपर बाबा का छत्र छाया वाला हाथ अनुभव होता ही रहेगा। वो नेचुरल योगी बनेंगे, उसको योग लगाने की मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन जो श्रीमत पर चलता है बाबा उसको प्यार करता है, बाबा उसको याद करता है और उसका बुद्धि योग अपने साथ जोड़ लेता है। इसलिए ये शिकायत ही खत्म हो जाती है कि क्या करें मेरा योग नहीं लगता, क्या करें मेरा योग नहीं लगता है। नेचुरल योगी बनना, बाबा हमेशा कहते हैं बाबा को मोहब्बत वाले योगी पसंद है, मेहनत वाले योगी बाबा देखना नहीं चाहते हैं। तो मोहब्बत वाले योगी यानी श्रीमत के आधार पर जब हम कर्म करते हैं तो नेचुरल योगी बन जाते हैं, और ये श्रीमत का हाथ पकड़ा तो बाबा का हाथ सर पे रहेगा, हमें किसी व्यक्ति के हाथ की आवश्यकता नहीं होगी। जो कई बार कई लोग सोचते हैं बहन जी आपका हाथ रख दो हमारे सिर, अरे भगवान का हाथ रखवाओ, किसी इंसान का हाथ रखवा के क्या करेंगे, है ना। भगवान का हाथ अनुभव करो, और अगर सचमुच बाबा का श्रीमत का हाथ पकड़ के चलते रहे तो हर कदम में बाबा का आशीर्वाद, बाबा की दुआएं आप खुद महसूस करेंगे। वो दुआएं जैसे आप कदम उठाने से पहले, वो दुआएं जैसे आपके लिए सामने हैं, जो आपको हर प्रकार से सुरक्षित महसूस कराएंगे। इसलिए आज के बाद जो बाबा कहते हैं किसी व्यक्ति का हाथ मेरे सिर पे रहो, ये इच्छा नहीं रखना। बाबा का हाथ मेरे सिर पे रहे, यही इच्छा यही आशा हमेशा लेकर के चलते चलो, और महसूस करेंगे कि सचमुच बाबा के छत्र छाया में ऐसे चल रहे हैं। हाँ, मुझे याद आता है कि जब हम पदयात्रा में थे, कई भाई बहने यहाँ उस 85 की पदयात्रा में होंगे, और हरेक का ये अनुभव है कि जब बाबा की याद में हम कदम उठा करके चलते थे, कभी कभी बहुत धूप होती थी और जब बाबा को याद करते थे, बाबा बहुत धूप है, सारा आसमान खाली होता था, एक बादल पता नहीं कहाँ से आ जाता था और छत्र छाया बन करके चलता था। ये अनुभव किया हुआ है, ये अनुभव है। इसीलिए कहा कि हमेशा बाबा का हाथ स्वयं के ऊपर महसूस करो, और इसका तरीका यही है कि कर्म योगी बन करके कर्म करते चलो, बाबा की श्रीमत का हाथ पकड़ के चलते चलो, हर वक्त बाबा का हाथ स्वयं के सर के ऊपर महसूस होता रहेगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना प्यार बाबा करेगा आपको, प्यार ही प्यार को खींचता है कि आपका प्यार भी बाबा के तरफ स्वतः लगने लगेगा और मोहब्बत वाले योगी आप बन जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। श्रेष्ठ कर्म का बल अनेक प्रकार के बंधनों से हमें मुक्त करता है। श्रेष्ठ कर्म का बल जमा का खाता अनुभव कराता है। जितना कर्म योगी बन करके कर्म करते चले श्रीमत के आधार पर, तो जैसे हर कदम में जमा का खाता हमारा बढ़ता जाता है, मल्टी मिलियन टाइम्स जमा का खाता बढ़ रहा है, ऐसा महसूस होगा कि पुण्य कर्म का जमा का खाता इतना बढ़ रहा है और परमात्मा दुआएं ऐसी प्राप्त होने लगेगी कि यही श्रेष्ठ कर्म का बल अनेक प्रकार के कर्म भोग की भोगनाओं से मुक्त करने वाला होगा। क्योंकि जो कर्म बंधन बांधे हैं ब्राह्मण बनने के बाद भी छोटे छोटे विकर्म कहीं हो गए, छोटे छोटे विकर्म भी हो गए। मैं कल ही एक कहानी पढ़ रही थी, शायद आप लोग ने सुनी भी होगी। तो कहानी ये थी कि एक बार एक राजा ने ये निश्चय किया कि मुझे मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण हैं उन सब ब्राह्मणों को ब्रह्मा भोजन करवाना है। तो उसने ब्रह्मा भोजन के लिए सबको न्योता दिया, खास पंडितों को बुलाया गया खाना पकाने के लिए, खाने की व्यवस्था सारी हो गई। और जहां वो ब्रह्मा भोजन बन रहा था, खुले में बन रहा था, काफी भोजन था, तो ऊपर से एक चील उड़ते हुए जा रही थी और चील के पैरों में एक सांप था, जहरीला सांप था। सांप अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न कर रहा था लेकिन उसकी पकड़ इतनी तेज थी वो छुड़ नहीं सकता था। तो सांप ने सोचा मैं अपना जहर उसके ऊपर फेंकता हूं, चील के ऊपर। और उसने जैसे फूंक मारी और उसी समय वो चील ऊपर से उड़ के जा रही थी जहां ब्रह्मा भोजन पक रहा था, तो वो जहर जो है ब्रह्मा भोजन में पड़ा। अब किसी को पता ही नहीं था कि इसमें जहर पड़ा हुआ है। जब ब्राह्मणों ने खाया सारे ब्राह्मण मर गए। अब राजा को बड़ा दुख हुआ कि भाई ऐसा कैसे हुआ, अब ब्राह्मण लोग सारे मर गए, किसी को पता ही नहीं कि चील ऐसे उड़ के जा रही थी और उसका। तो जब ऊपर गए सारे ब्राह्मण तो चित्रगुप्त को पूछा गया, धर्मराज ने पूछा कि ये पाप किसके खाते में जाएगा, ये पाप किसके खाते में डालेंगे। राजा के खाते में डालेंगे जो जानता ही नहीं था, बड़ी शुभ भावना के साथ उसने तो ब्रह्मा भोजन का आयोजन किया था। जो ब्राह्मण खाने वाले थे वो भी बड़े भाव से आकर के खा रहे थे, जो पंडितों ने बनाया वो भी बहुत शुभ भावना के साथ बना रहे थे, वो चील जो उड़ के जा रही थी उसको भी पता नहीं था, और सांप ने भी उस भाव से तो सांप जहर डाला ही नहीं, तो ये पाप किसके खाते में जाएगा इतने ब्राह्मणों की हत्या का। तो चित्रगुप्त भी बड़ा वंडर खा गया कि किसके खाते में डाले, है ना। तो कहा ये फाइल पेंडिंग रखो, आगे कहानी बहुत अच्छी है। कर्म कर्म की गुह्य गति बताई है इसलिए मैं बता रही हूं। कहा ये फाइल पेंडिंग रखो, तो फाइल को पेंडिंग रखा। थोड़े दिन में एक मुसाफिर आया उस राज्य में और वो राजा से मिलना चाहते थे। तो उसने एक माता थी, उस माता से पूछा कि राजमहल जाने का रास्ता कौन सा है। तो उसने कहा कहां जाना चाहते हो, तो कहा मैं राजा से मिलना चाहता हूं। कहा वही राजा जिसने इतने ब्राह्मणों की हत्या कराई। तो चित्रगुप्त ने कहा सारा पाप का बोझा इसी के ऊपर डालो। भाव ये था भाई उसने तो कर्म किया ही नहीं। धर्मराज ने पूछा जब वो माता ने कर्म किया ही नहीं फिर उसके खाते में क्यों डाला गया। तो कहा जो भी कर्म हुआ लेकिन उस कर्म के बाद उस कर्म के जो अनहोनी थी उसका जो आनंद लेना जानता है, जो उसको रसदार बना करके दूसरों को भी सुनाता है या दूसरों को भी वहां से अलग करता है, है ना। राजा के प्रति जो भाव है उस भाव को तोड़ करके उनको अलग करने का प्रयत्न करता है तो उसी के खाते में सारा वो पाप का बोझा जाता है। भावार्थ ये कि बाबा के बच्चे भी कभी कभी खुद तो श्रीमत के आधार पर ही कर्म करते हैं, लेकिन जो बिचारे किसी कारणवश श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं, उसकी निंदा करना, उसका पर चिंतन करना, उसके विषय में कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल करके उसके प्रति भाव को खत्म करना, बड़ों के भाव को खत्म करना, ये बड़ों के दिल पर नजदीक भी अगर वो आत्माएं हैं उसको खत्म करना, ऐसी जो क्या कहेंगे, ऐसी जो कौन सी नीति कहेंगे इसको, हाँ ये चाणक्य नीति तो नहीं है, ऐसी जो कूटनीतियां अपने दिमाग में रखते हैं, वो अनजाने पन में कितने कर्म का, पाप के कर्म के भागी बन जाते हैं। ये है कर्मों की गुह्य गति। ये बात कभी हमारे कर्म को श्रेष्ठ कर्म होने नहीं देता है। इसलिए आज के बाद ऐसी बातों से स्वयं को मुक्त रखो, तब यथार्थ कर्म योगी बन सकेंगे। अगर उन बातों को इंटरेस्ट से सुनने का भी प्रयत्न किया तो उस कर्म के भागीदार तो जरूर बन जाएंगे। इसलिए ऐसी व्यर्थ की बातें, पर चिंतन की बातें, ऐसे पर दर्शन की बातें, पर मत के प्रभाव में आकर के कर्म करने वाले नहीं, खुद भले श्रीमत पर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो परमत के प्रभाव में भी बीच बीच में आ जाते हैं, तो वो भी बहुत सूक्ष्म पाप कर्म के भागीदार बन ही जाते हैं। इसलिए आज के बाद ऐसे पाप कर्म के भागीदार न बने, क्योंकि नहीं तो ये कर्म भोग अंतिम समय में कई प्रकार की भोगनाएं क्रिएट करेंगे, जिन भोगनाओं के शिकार बनेंगे। तो कर्म योग की शक्ति ही वो है जो कर्म भोग की भोगना को समाप्त करने की ताकत रखता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में ऐसा कर्म योगी बाबा का जीवन रहा, बाबा ने कोई कर्म छोड़ा नहीं, अंतिम घड़ी तक कर्म करते ही रहे। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए और 13 दिन तक भोग लग रहा था, तो एक भोग के अंदर गुलजार दादी ने बाबा से पूछा कि सभी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अंतिम समय आपकी स्थिति कैसी थी। तो 69 के ये भोग के मैसेज की बात है कि जिसमें बाबा ने कहा कि अंतिम समय कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई थी। कर्म भोग दर्द पहुंचाना चाहते थे, कर्म भोग नीचे उतारना चाहते थे, लेकिन कर्म योग की शक्ति वो भोगना का अनुभव नहीं करने देना देती थी, और इसी तरह ये लड़ाई चल रही थी। और उस समय इस लड़ाई में धीरे धीरे कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो गए और कर्म योग का विजय हो गया, और इस तरह से सहज बाबा शरीर छोड़ करके अव्यक्त हो गए। कहने का भावार्थ के सूक्ष्म जो कर्म हुए हैं, तो कई प्रकार के सूक्ष्म कर्म, पाप कर्म वो भोगना का अनुभव कराएंगे अंतिम समय, और इस तरह भोगना के रूप में सामने आएंगे जो उस दर्द में अगर शरीर छोड़ा, माना देह भान में छोड़ा, तो कर्मातीत अवस्था को नहीं प्राप्त हुए। तो इसीलिए कर्म योग की शक्ति अगर है, श्रेष्ठ कर्म का जमा का खाता है, श्रेष्ठ कर्म का बल है, तो वो बल वो भोगना का अनुभव नहीं करने देगा, उसके साथ लड़ाई करते हुए भोगना को खत्म करेगा और सहज बाबा की याद में हम शरीर छोड़ करके ऊपर जाएंगे। तो ये है विजयी आत्मा। चौथी बात, कर्म योगी बनना माना क्या? तो कर्म योगी माना योग युक्त होकर के कर्म करना। योग युक्त माना दिव्य बुद्धि युक्त होकर के कर्म करना। दिव्य बुद्धि का प्रयोग करना, जो कर्म करे आनंद की स्थिति में खुशी से कर्म करे, योग युक्त तो उसको कहा जाता है, युक्ति युक्त तो उसको कहा जाता है जहां दिव्य बुद्धि का प्रयोग हुआ हो। कई बार कई लोग झूठ बोल देते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं और कहते हैं बाबा ने कहा ना युक्ति युक्त होकर के चलना। ऐसा युक्ति युक्त होकर के चलने के लिए बाबा ने नहीं कहा, दिव्य बुद्धि युक्त को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दिव्य बुद्धि का जो प्रयोग करता है वो योग युक्त स्वतः बनता है। दिव्य बुद्धि का जहां प्रयोग है वहां सकारात्मक मनस्थिति, जो खुद को भी सेफ रखता है और दूसरों को भी कष्ट नहीं पहुंचाता है, या उसको भी दुख या तकलीफ नहीं होने देता है, उसको कहा जाता है योग युक्त या युक्ति युक्त। योग युक्त माना झूठ बोल करके सामने वाले को हम भ्रम में डाल दे और खुद कोई चीज का आनंद का अनुभव कर ले, उसको योग युक्त नहीं कहा गया है, उसको युक्ति युक्त नहीं कहा गया है। लेकिन जो योग युक्त होगा उसके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी ही नहीं जो उसको कोई चालाकी का प्रयोग करना पड़े या झूठ बोलने की आवश्यकता का प्रयोग करना पड़े। नहीं, वो मौन में रह करके ही, जैसे झूठ बोलना भी न पड़े और वो कार्य भी सिद्ध हो जाए, ऐसी उसकी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऑरा जो है वो कार्य करता है। जब हम योग करते हैं और योग के माध्यम से जितनी हमारा श्रेष्ठ कर्म है, तो वो श्रेष्ठ कर्म हमारा जो पॉजिटिव एनर्जी का ओरा है वो इतना अधिक विकसित कर लेता है कि सामने वाला, अगर कई बार कई लोग क्या कहते हैं, मुझे ऐसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। अब उसने झूठ क्यों बोला, सामने वाले ने झूठ क्यों बोला? झूठ कब बोलता है व्यक्ति? डर, किसी भी प्रकार का डर व्यक्ति को झूठ बुलवाता है, उस डर से वो बचना चाहता है, इसीलिए वो झूठ का प्रयोग करता है। लेकिन डर माना नेगेटिव ओरा। हर व्यक्ति के आसपास, साइंस ने ये प्रमाणित कर दिया है कि हर व्यक्ति के आसपास या पॉजिटिव ओरा होता है या नेगेटिव ओरा होता है, और जिस व्यक्ति के आसपास एक नेगेटिव ओरा ज्यादा होता है वो झूठ बोलता है डर के कारण, नहीं तो वो झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो पॉजिटिव ऊर्जा से संपन्न है उसके सामने कोई झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, इसलिए सामने वाला भी झूठ नहीं बोलेगा और न आपको उसको डराने का या उसको उसके सामने अपना स्वरूप ऐसा कड़क करने की आवश्यकता रहती है। लेकिन जितना आप अपने पॉजिटिव ओरा में रहेंगे, सामने वाला चुप हो जाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, और थोड़ी देर के बाद आपके पास आकर के यही कहेगा, उस समय मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन वास्तविकता ये है। ना आपको गुस्सा करने की आवश्यकता होगी, ना उसको कोई झूठ बोलने की आवश्यकता होगी, लेकिन आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव थोड़ी देर के बाद भी उससे सत्य बुलवाएगा। इसीलिए योग युक्त, युक्ति युक्त, दिव्य बुद्धि युक्त माना ज्ञान युक्त बोलना। इसीलिए बाबा हमेशा कहते, मुझे ज्ञानी तू आत्मा पसंद है, योगी तू आत्मा पसंद है। बाबा को ऐसे बच्चे पसंद नहीं है जो छोटे छोटे मतलब के लिए भी झूठ बोल करके ये कहे कि मैं तो युक्ति युक्त होकर के चल रहा था कि हाँ बांधे लियो के लिए बाबा कई बार उनको इस बात के लिए स्वीकृति देते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो छूटेले हैं वो भी ऐसे ही प्रयोग करना चालू कर दे। उसके लिए बाबा की ये श्रीमत नहीं है। इसीलिए आज के बाद कर्म योगी बनना मतलब योगयुक्त होकर के कर्म करना, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रह करके कर्म करना, और दिव्य बुद्धि युक्त होकर के जो कर्म करता है उसका प्रमाण क्या, उसका हर कर्म यादगार बन जाता है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है, आदर्श बन जाता है, और वही उनके लिए जैसे इष्ट स्वरूप अष्ट रत्न में आने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा इसीलिए कई बार कहते हैं जो इष्ट होता है वही अष्ट की माला में आ जाता है, तो कर्म योगी कर्मातीत स्थिति तक ले जाती है। कर्मातीत स्थिति माना देहातीत, संसारतीत, इंद्रियातीत। देहातीत माना देह के भान से परे मालिक बनकर के कर्म इंद्रियों का कर्म में प्रयोग करते हुए इंद्रिय जीत, और संसारतीत माना संसार में जब हम रहते हैं तो मान अपमान निंदा स्तुति ग्लानी महिमा ये चलता रहेगा। सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत हानि महिमा ये होता रहेगा, लेकिन इन सब के प्रभाव से भी मुक्त उसको कहा जाता संसार संसारतीत। तो देहातीत, संसारतीत और इंद्रियातीत या इंद्रिय जीत, ऐसे जितेंद्रिय ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करता है। तो कर्म को छोड़ना नहीं है, अंत घड़ी तक हमें कर्म करते जाना है, लेकिन कर्म योग की विधि से कर्म करेंगे तो बंधनों से मुक्त जमा के खाते को अनुभव करते हुए हर कर्म एक यादगार बना देंगे, अनेकों के लिए आदर्श इष्ट और अष्ट की माला के मणके बन जाएंगे। तो योग लगे न लगे लेकिन प्रैक्टिकल कर्म अगर सही है तो योग स्वतः लग ही जाता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि अमृत वेले कई लोग शिकायत करते हैं, बाबा नींद आ जाती है, मुरली सुनने बैठते हैं उस समय नींद आ जाती, आंखें भारी हो जाती है, क्यों? तो बाबा ने एक मुरली में उसकी भी गुह्य गति बताई है कि इसका मतलब दिन भर में सूक्ष्म पाप कर्म का बोझ ज्यादा है, वो भारीपन का अनुभव कराता है जो दूसरे दिन सुबह योग लगने नहीं देता है, न ही मुरली के अंदर आपका मन लगने देता है, नींद आना स्वाभाविक है, चाहे योग में चाहे मुरली में। दिन भर में भी आलस आलस बना रहेगा और उसका कारण यही है, सूक्ष्म पाप कर्मों का बोझ भारी कर देता है, इसलिए ये पलकें भारी हो जाती है। तो कर्म योग की विधि से कर्मातीत बन करके दिखाना है। योग लगे न लगे अच्छे कर्म तो करो, ब्राह्मण बने हैं, दुनिया वाले लोग भी कहते ये भगवान के बच्चे हैं, तो इसीलिए हम ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो हमारा एक एक कर्म यादगार बन जाए, किसी को दुख कष्ट पहुंचाने वाला न हो, किसी को तकलीफ देने वाला न हो, किसी का अपमान करना या उसके स्वमान को हानि पहुंचाने वाला न हो। ये सूक्ष्म विकर्म का बोझ भी हमें कर्मातीत स्थिति तक पहुंचने नहीं देगा। और भले सेवा हम करते हैं लेकिन फिर भी कर्मातीत स्थिति नहीं बनाई, ब्राह्मण जीवन अपना करके स्थिति नहीं बनी हमारी, अवस्था नहीं बनी, तो अंतिम समय क्या होगा? कहीं अफसोस न करना पड़े कि सेवा में बिजी रहे लेकिन कर्म श्रेष्ठ नहीं रहे, स्थिति नहीं बना पाए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।